एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन के सफर पर निकल रहे हैं जिसका नाम सुनते ही ना अक्सर बस खबरों की सुर्खियां याद आती हैं।
हाँ, या फिर तेल या आजकल का राजनीतिक तनाव।
बिल्कुल, लेकिन आज हम इन सबसे थोड़ा परे हटेंगे और एक बहुत पुरानी, बहुत असरदार सभ्यता की हजारों साल पुरानी कहानी में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं ईरान की,
और इस गहरे सफर में हमारी गाइड होंगी माइकल एक्सवर्दी की किताब ए हिस्ट्री ऑफ ईरान, जिसका एक और बहुत दिलचस्प नाम है एम्पायर ऑफ द माइंड,
मन का साम्राज्य।
हाँ, मन का साम्राज्य। और ये किताब मतलब सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये समझने की कोशिश है कि आखिर वो क्या चीज है जिसने ईरान को इतने उतार चढ़ाव के बाद भी।
बिल्कुल, और देखिए आज के माहौल में तो ये समझना और भी जरूरी हो गया है।
सही बात है।
जब भी हम ईरान के बारे में सुनते हैं ना, तो अक्सर एक बहुत ही मतलब सीमित सी तस्वीर दिमाग में बनती है। इस किताब की खासियत यही है कि ये उन सतही धारणाओं को तोड़ती है।
हाँ,
और हमें ईरान के उस लंबे, पेचीदा और सच कहूं तो शानदार इतिहास को समझने का मौका देती है।
और ये दिखाती है कि आज के ईरान को समझने के लिए उसके अतीत में झांकना कितना जरूरी है।
तो फिर कहानीकार को जानना भी जरूरी है ना।
हाँ बिल्कुल। माइकल एक्सवर्दी 1962 में जन्मे, 2019 में गुजरे। ये सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे, मतलब सिर्फ इतिहासकार नहीं।
हाँ,
कैम्ब्रिज से पढ़े, ईरानी इतिहास में पीएचडी की, वो सब तो ठीक है, लेकिन उनकी कहानी में एक और बहुत अहम पहलू है।
और वो पहलू तो वाकई बड़ा दिलचस्प है। एक्सवर्दी पहले ब्रिटिश राजनयिक भी रह चुके थे। और सिर्फ राजनयिक नहीं, 1998 से 2000 तक तो वो ब्रिटिश विदेश मंत्रालय में ईरान सेक्शन के हेड थे।
सोचिए जरा।
हाँ, मतलब ये वो दौर था जब ईरान में वो सुधारवादी हवा चल रही थी, राष्ट्रपति खात्मी का जमाना था। तो एक्सवर्दी उस वक्त सीधे सीधे ईरानी राजनीति और उसकी नब्ज को क्या कहते हैं, महसूस कर रहे थे।
यही बात उन्हें खास बनाती है। उनके पास वो अकादमिक गहराई भी थी।
हाँ,
और जमीनी हकीकत की मतलब डिप्लोमेटिक समझ भी,
और ऊपर से फारसी जबान भी जानते थे।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ,
इससे उन्हें सीधे ईरानी स्रोतों तक,
हाँ,
उनकी सोच तक पहुंच मिली। उनका नजरिया अक्सर जो पश्चिमी सोच होती है ना, उससे थोड़ा हटकर है।
हाँ, वो कोशिश करते हैं ईरान को उसकी अपनी शर्तों पर समझने की।
बिल्कुल।
हाँ,
एक बैलेंस्ड नजरिया कह सकते हैं।
तो अब आते हैं किताब पर, हिस्ट्री ऑफ ईरान। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कैनवस है ना।
बहुत बड़ा, करीब 3000 साल का इतिहास समेटा हुआ है इसमें।
कहां से कहां तक, प्राचीन फारसी साम्राज्यों की बुलंदी से लेकर
फिर इस्लाम का आना, मंगोलों का वो भयानक तूफान, सफी वंश का मोड़,
और फिर आधुनिक दौर की उथल पुथल से गुजरते हुए आज के इस्लामी गणराज्य तक।
हाँ, और इसका मकसद है हम जैसे आम पढ़ने वालों को ईरान की एक ऐसी समझ देना जो सिर्फ अखबार की सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरी हो, ज्यादा मानवीय हो।
और जैसा आपने शुरू में कहा, किताब का दिल, उसका जो सेंट्रल आइडिया है, वो है एक्सवर्दी का ये विचार, एम्पायर ऑफ द माइंड,
मन का साम्राज्य। उनका तर्क है कि ईरान की असली ताकत वो उसकी तलवार या सरहदों में नहीं रही है कभी। वो रही है उसकी संस्कृति में। ये एक ऐसा साम्राज्य है जो फारसी भाषा की मिठास पर टिका है,
उसकी शायरी की गहराई,
हाँ, उसके अनोखे धार्मिक और दार्शनिक विचारों पर। और ये चीजें मतलब किसी भी फौजी ताकत से ज्यादा टिकने वाली साबित हुई हैं।
किताब एक बुनियादी सवाल से जूझती है, लेकिन वो सवाल बहुत गहरा है।
कौन सा?
कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि एक ऐसी सभ्यता जो हमेशा दुनिया के चौराहे पर रही।
हाँ, मतलब हमले पर हमले झेले।
बिल्कुल, यूनानियों से लेकर अरब, तुर्क, मंगोल, कितने भयानक हमले झेले, फिर भी वो अपनी एक अलग पहचान, एक धागा लगातार बनाए रखने में कामयाब रही।
जबकि कितनी ही ताकतवर सल्तनतें तो इतिहास में गुम हो गईं।
हाँ, पर ईरान बना रहा कैसे?
और एक्सवर्दी का जवाब यही है। वो कहते हैं कि ईरान की संस्कृति ने हमलावरों को ही अपने रंग में रंग लिया।
अच्छा।
हाँ, उसके विचार, उसकी भाषा, उसके शासन के तरीके इतने असरदार थे कि बाहर से आने वाले विजेता भी धीरे धीरे उन्हें अपनाने लगे।
मतलब वो खुद ही ईरानी बन गए एक तरह से।
बिल्कुल, यहाँ तक कि वो फारसी कला और साहित्य के बड़े संरक्षक बन गए। ये किताब इन्हीं सब धागों को पकड़ती है। फारसी पहचान कैसे बनी, इस्लाम का क्या असर हुआ, शिया इस्लाम की क्या भूमिका रही,
परंपरा और आधुनिकता का टकराव,
और बाहरी दुनिया का दखल, ये सब कुछ।
चलिए, तो फिर इस लंबे इतिहास के कुछ अहम पड़ावों पर थोड़ी नजर डालते हैं, जरा करीब से।
जरूर। कहानी शुरू होती है प्राचीन नींव से, खखामनी साम्राज्य,
अकेमेनिड एम्पायर।
हाँ, ईसा पूर्व छठी सदी, साइरस महान, उन्होंने पहले फारसी साम्राज्य की नींव रखी। एक्सवर्दीस पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये शासन का एक नया आइडिया था जिसमें अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के लिए सहिष्णुता थी।
वो मशहूर साइरस सिलेंडर इसी का सबूत माना जाता है ना?
बिल्कुल। ये सिर्फ कब्जा करने वाला साम्राज्य नहीं था, बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने वाला था, एक तरह का सिंथेसिस।
इसके बाद पार्थियन और फिर सासानी राजवंश आए।
हाँ, सासानी काल 224-651 ईस्वी बहुत अहम है, क्योंकि इस दौरान प्रशासन और संस्कृति का जो ढांचा बनाना, वो बहुत मजबूत साबित हुआ।
जैसे?
जैसे उनका वो दीवान सिस्टम था, मतलब वित्त और प्रशासन का, वो इतना कारगर था कि बाद में इस्लामी खलीफाओं ने भी उसे अपना लिया।
अच्छा।
और इसी दौर में जरथुष्ट धर्म राज्य धर्म बना। इसने ईरानी सोच पर बहुत गहरी छाप छोड़ी,
खासकर वो अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष।
हाँ, और इंसान की चुनने की आजादी, मतलब फ्री विल, और सच्चाई के रास्ते पर चलने का विचार।
फिर आता है इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़, सातवीं सदी, अरबों की विजय 633-654 ईस्वी।
एक्सवर्दी से सिर्फ फौजी हार नहीं मानते, वो इसे दो ताकतवर सभ्यताओं का क्या कहते हैं, गहरा टकराव मानते हैं। ईरानियों ने धीरे धीरे इस्लाम अपनाया, हाँ, लेकिन ये कोई सीधी लाइन में नहीं हुआ। उन्होंने इस्लाम को अपनी पहले से मौजूद मजबूत सांस्कृतिक जड़ों के साथ मिलाया, ढाला उसे।
और यही ईरान की वो सांस्कृतिक ताकत फिर दिखती है।
बिल्कुल। इस्लाम अपनाने के बावजूद ईरान पूरी तरह अरबी नहीं बना।
ये बड़ी बात है।
हाँ, कुछ सदियों बाद फारसी भाषा, हाँ, अब अरबी लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन वो दोबारा साहित्य, शायरी और दरबार की जबान बनकर उभरी।
और इसका सबसे बड़ा सबूत है फिरदौसी का वो शाहकार शाहनामा।
हाँ, शाहनामा लगभग 1000 ईस्वी में लिखा गया। इसने ईरान के पुराने राजाओं, नायकों, मिथकों को जैसे दोबारा जिंदा कर दिया।
फारसी भाषा और पहचान को एक नई जान भोग दी।
बिल्कुल। इसे एक तरह का फारसी पुनर्जागरण कह सकते हैं। और इसी दौर में रूमी जैसे महान सूफी शायर हुए।
और इब्न सीना, जिन्हें पश्चिम में एविसेना कहते हैं, वो भी तो इसी दौर के थे।
हाँ, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और चिकित्सक।
लेकिन इतिहास का पहिया कहाँ रुकता है? 11वीं सदी में सेल्जुक तुर्क आ गए,
और फिर 13वीं सदी में वो तबाही, चंगेज खां और हलाकू खां के नेतृत्व में मंगोलों का हमला।
उसकी कहानियां तो रोंगटे खड़े कर देती हैं।
हाँ, शहर के शहर वीरान हो गए, लाइब्रेरियां जला दी गईं, लाखों लोग मारे गए। ऐसा लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया। पर यही एक्सवर्दी का वो मन का साम्राज्य वाला तर्क सबसे ज्यादा हैरान करता है।
कैसे?
इस भयानक तबाही के बाद भी वक्त गुजरा और इन्हीं तुर्क और मंगोल शासकों ने फारसी संस्कृति को अपना लिया।
क्या बात है।
हाँ, वो फारसी कला, साहित्य, शासन के तरीकों के बड़े हिमायती बन गए, संरक्षक बन गए।
मतलब हमलावर खुद उसी संस्कृति का हिस्सा बन गए जिसे वो शायद मिटाने आए थे।
बिल्कुल। और सोचिए, रूमी और हाफिज जैसे महान सूफी शायर, जिनकी शायरी आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है, वो इसी भयानक उथल पुथल के दौर में लिख रहे थे। शायद बाहरी दुनिया टूट रही थी, लेकिन वो मन का साम्राज्य और गहरा हो रहा था।
यहाँ तक हमने देखा कि संस्कृति कैसे बची रही, कैसे उसने दूसरों को अपने में मिला लिया। लेकिन अब एक ऐसा मूड आता है जो शायद आज के ईरान की पहचान गढ़ने में सबसे अहम था।
आप सफवी राजवंश की बात कर रहे हैं।
हाँ, 16वीं सदी, शाह इस्माइल प्रथम 1501 में इस वंश की नींव रखी, और ये आधुनिक ईरान के लिए एक वॉटरशेड मूवमेंट साबित हुआ।
और वो इसलिए क्योंकि सफवियों ने एक बहुत बड़ा और शायद कहें तो दूरगामी फैसला लिया।
क्या फैसला?
उन्होंने 12वें शिया इस्लाम को ईरान का राजकीय धर्म घोषित कर दिया।
अच्छा, शिया इस्लाम की वो शाखा जो 12 इमामों में यकीन रखती है।
हाँ, और सिर्फ घोषित नहीं किया, इसे सख्ती से लागू भी किया, जबकि इससे पहले ईरान में ज्यादातर आबादी सुन्नी थी।
तो इसका असर क्या हुआ?
इसका असर ये हुआ कि ईरान को एक बिल्कुल अलग धार्मिक पहचान मिल गई, जो उसे उसके ताकतवर सुन्नी पड़ोसियों से अलग करती थी।
जैसे पश्चिम में ऑटोमन साम्राज्य था,
और पूरब में उज़्बेक। हाँ, करबला में इमाम हुसैन की शहादत की याद, और उलेमा यानी मौलवियों का बढ़ता रुतबा, ये सब ईरानी राष्ट्रीय चेतना का अटूट हिस्सा बन गए।
तो एक्सपर्ट ही मानते हैं कि यहीं पर वो आधुनिक ईरानी राष्ट्रीय पहचान मतलब फारसी भाषा, संस्कृति और शिया आस्था का मेल सही मायनों में पैदा हुई।
बिल्कुल, ये एक बहुत अहम मोड़ था।
सफवियों के बाद फिर नादिर शाह का एक छोटा मगर तूफानी दौर आया, लेकिन फिर कजार वंश का लंबा शासन चला।
हाँ, कजार वंश 1794-1925, और ये दौर थोड़ा कमजोर माना जाता है, और यही वो वक्त था जब ईरान पहली बार आधुनिक यूरोपीय ताकतों के दबाव में आया।
ब्रिटेन और रूस।
हाँ,
और ईरान उन दोनों के बीच चलने वाले ग्रेट गेम का जैसे मैदान बन गया।
हाँ, उसे अपने इलाके गंवाने पड़े, उसकी आर्थिक हालत भी डामाडोल हुई।
और एक्सवर्थी ये भी दिखाते हैं कि ये सिर्फ हार नहीं थी, इस बाहरी दबाव ने, इस अपमान ने ईरानियों के अंदर एक गहरे राष्ट्रवाद को जगाया।
हाँ, और विदेशी ताकतों के खिलाफ गुस्से को भी। इसी भावना ने फिर आगे चलकर तंबाकू विरोध आंदोलन
और 1906 की वो संवैधानिक क्रांति,
बिल्कुल, उन घटनाओं को हवा दी। ये दिखाता है कि आम लोग भी अब इतिहास में अपनी भूमिका निभा रहे थे।
20वीं सदी ने फिर एक नया पन्ना खोला। 1921 में रजा खान एक फौजी कमांडर,
हाँ, उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया और 1925 में खुद को रजा शाह पहलवी घोषित कर दिया।
और उन्होंने तुर्की के कमाल अतातुर्क की तरह ईरान को तेजी से मॉडर्न बनाने का बीड़ा उठाया।
हाँ, एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था, आधुनिकीकरण, सेक्युलराइजेशन, लेकिन उनका तरीका थोड़ा तानाशाही वाला था।
उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसी रास्ते को और तेजी से आगे बढ़ाया।
एक्सबर्दी यहाँ तस्वीर के दोनों पहलू दिखाते हैं। वो ये मानते हैं कि पहलवी दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, स्कूल खुले, महिलाओं को कुछ अधिकार भी मिले।
हाँ, ये तो हुआ,
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, भयानक राजनीतिक दमन, शाह की खुफिया पुलिस सावाक का खौफ। अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत बढ़ गई थी, और जिस तेजी से पश्चिमीकरण हो रहा था उससे समाज का एक बड़ा तबका, खासकर पारंपरिक और धार्मिक लोग, खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे।
और इसी दौर की एक घटना है जिसने शायद ईरान के इतिहास पर सबसे गहरा और शायद कहें तो सबसे नकारात्मक असर डाला।
आप 1953 के तख्ता पलट की बात कर रहे हैं।
हाँ, जब अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार गिरा दी।
मुसद्दिक, जिन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था।
बिल्कुल, उनका यही गुनाह था। ये घटना ईरानियों के जहन में पश्चिमी दखलंदाजी और नाइंसाफी का प्रतीक बन गई,
और इसने शाह की हुकूमत की वैधता पर हमेशा के लिए सवाल या निशान लगा दिया।
और इसी जमीन पर फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बीच पनपे।
एक्सवर्दी इसे सिर्फ मतलब कुछ मुल्लाओं की क्रांति नहीं मानते।
नहीं,
वो इसे शाह की तानाशाही, सालों की विदेशी दखलंदाजी और वो जो सांस्कृतिक अलगाव महसूस हो रहा था उसके खिलाफ एक बहुत बड़े जन आंदोलन के तौर पर देखते हैं,
जिसका चेहरा आखिरकार आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी बने।
हाँ, और खुमैनी ने विलायते फकीही का सिद्धांत दिया, यानी इस्लामी कानून के जानकार का शासन, जो नए ईरान का आधार बना।
इसके बाद वो भयानक ईरान इराक जंग चली 8 साल तक,
1980 से 1988 तक। लाखों लोग मारे गए, लेकिन इसने कहीं ना कहीं नई हुकूमत को दुश्मनों के खिलाफ एकजुट किया और वो शहादत और प्रतिरोध की भावना को और गहरा कर दिया।
किताब खुमैनी के बाद की ईरान की भी बात करती है ना।
हाँ, जहाँ कट्टरपंथियों और सुधारवादियों के बीच वो खींचतान चलती रहती है, परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया से तनाव है और अमेरिका के साथ रिश्ते तो खैर मुश्किल बने ही हुए हैं।
तो इस पूरे मतलब इतने लंबे और उतार चढ़ाव भरे सफर से कुछ बड़े सबक या थीम क्या निकलते हैं?
मेरे ख्याल में सबसे पहला और सबसे अहम तो वही है, मन का साम्राज्य।
हाँ,
और ईरान की वो सांस्कृतिक सहन शक्ति, वो रेजिलियंस, कि ईरान की असली ताकत उसकी सेना या सरहदों में नहीं बल्कि उसकी भाषा, उसकी शायरी, उसके विचारों में रही है, जिसने उसे बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत दी।
दूसरा, वो पहचान की निरंतरता, कि इस्लाम अपनाने के बाद भी ईरान ने अपनी जमीन से जुड़ी जड़ों को, अपनी फारसी भाषा को, शाहनामा जैसी कहानियों को जिंदा रखा।
हाँ, ये दिखाता है कि संस्कृतियां बदलती जरूर है, लेकिन वो नई चीजों को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, पूरी तरह मिटती नहीं, एक नया रूप ले लेती हैं।
तीसरा, वो फारसी पहचान और शिया इस्लाम का खास मेल, जो सफवी दौर में बना,
जिसने ईरान को उसके पड़ोसियों से एक अलग पहचान दी, और ये आज भी उसकी राजनीति और समाज के केंद्र में है। इसे समझे बिना आप ईरान को नहीं समझ सकते।
चौथा, शासक और जनता के बीच का वो एक तनावपूर्ण रिश्ता।
हाँ, कि ईरानी इतिहास में बार बार ये दिखता है कि लोगों के मन में एक न्यायप्रिय, एक आदर्श राजा की चाहत रहती है,
और जब उन्हें लगता है कि शासक जालिम है या बाहरी ताकतों के इशारे पर नाच रहा है,
तो विरोध और क्रांति की चिंगारी भड़क उठती है। ये पैटर्न 1906 में भी दिखा, 1979 में भी।
पांचवां, जिसे हम शायद अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं,
शायरी की ताकत।
हाँ, फिरदौसी, हाफिज, सादी, रूमी, ये ईरान में सिर्फ शायर नहीं है।
नहीं, वो तो जैसे नैतिक गाइड है, इतिहासकार है, राष्ट्रीय आत्मा की आवाज है।
उनकी बातें आज भी कहावतों की तरह इस्तेमाल होती हैं। ये मन के साम्राज्य का शायद सबसे खूबसूरत पहलू है।
छठा, वो पश्चिम के साथ मुश्किल रिश्ता। 19वीं सदी में ग्रेट गेम का शिकार बनने से लेकर 1953 के तख्ता पलट और आज के तनाव तक पश्चिम के साथ ईरान के जो अनुभव रहे हैं, उन्होंने उसके मन में गहरा शक पैदा किया है।
और विदेशी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत भावना, इसे समझे बिना हम आज के ईरान की विदेश नीति को नहीं समझ सकते।
और आखिरी सातवां, वो सत्तावाद और क्रांति का चक्र।
हाँ, कि इतिहास गवाह है कि ईरान में जब भी तानाशाही बढ़ी है, चाहे वो शाहों की हो या बाद में किसी और रूप में, जनता का गुस्सा भड़का है और उसने बदलाव की मांग की है। ये एक तरह का ऐतिहासिक पैटर्न सा लगता है। एक्सवर्दी अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ, जैसे वो लिखते हैं, ईरान हमेशा से संश्लेषण और विरोधाभासों की भूमि रहा है।
साम्राज्य और अराजकता,
नफासत और सादगी,
रहस्यवाद और तर्कवाद,
शायरी और सियासत,
सब कुछ एक साथ।
मतलब ये है कि ईरान इतना गहरा है, इतना बहुआयामी, कि उसे किसी एक लेबल में बांधना नामुमकिन है।
बिल्कुल। और एक और बहुत गहरी बात वो कहते हैं,
बताइए, पारसी सभ्यता की असली प्रतिभा इस बात में रही है कि उसने विजेताओं और पड़ोसियों से मिले प्रभावों को आत्मसात किया, बदला और आखिरकार उनसे आगे निकल गई।
वाह, ये उस सांस्कृतिक लचीलेपन का निचोड़ है जिसकी हम बात कर रहे थे। जैसे कोई नदी अपने साथ बहुत कुछ बहाकर लाती है, पर रहती नदी ही है।
हाँ, बिल्कुल वैसी ही बात है।
और ये आज की दुनिया के लिए बहुत अहम है। आधुनिक ईरान को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ईरानी खुद को दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक के वारिस के तौर पर देखते हैं,
न कि मध्य पूर्व के किसी किनारे पड़े देश के रूप में। उनका यह आत्मसम्मानीय गौरव उनकी सोच और दुनिया के साथ उनके बर्ताव को तय करता है।
1979 की क्रांति पर भी उनका नजरिया थोड़ा अलग है।
हाँ, वो कहते हैं, इस्लामी क्रांति ईरानी इतिहास का अंत नहीं, बल्कि उसका सबसे नया अध्याय।
हाँ, वीरानी पहचान को इस्लामी सिद्धांतों के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश।
ये हमें उस बड़ी घटना को सिर्फ धार्मिक कट्टरता के चश्मे से देखने की बजाय उसे ईरान के हजारों साल के इतिहास के संदर्भ में रखने में मदद करता है, ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाता है।
तो ये सब जानकर, ये इतिहास समझकर, आज हमें क्या फायदा? मतलब इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना?
देखिए, सबसे पहले तो ये आज की दुनिया की राजनीति, खासकर मध्य पूर्व को समझने में मदद करता है।
हाँ,
ईरान की विदेश नीति क्यों ऐसी है, सऊदी अरब से उसकी वो प्रतिद्वंदिता क्यों है, पश्चिमी देशों पर वो इतना शक क्यों करता है, इन सब के जवाब कहीं ना कहीं इतिहास में छिपे हैं।
शिया सुन्नी बंटवारे में, एक महान साम्राज्य की यादों में, 1953 के उन जख्मों में।
बिल्कुल। दूसरे, ये कूटनीति के लिए, अलग अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत के लिए जरूरी है।
कैसे?
अगर आप ईरान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता बना रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो या कोई और बातचीत, तो ये जानना कि वो अपनी भाषा, अपनी शायरी, अपनी तारीख पर कितना फख्र करते हैं। उनकी पुरानी शिकायतों को समझना, ये सब बातचीत को ज्यादा कामयाब बना सकता है। उनके आत्मसम्मान को समझना जरूरी है।
तीसरा, ये हमें बेहतर मीडिया उपभोक्ता बनाता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक स्वदी की किताब हमें सिखाती है कि ईरान या किसी भी देश के बारे में जो सीधी साधी एक तरफा कहानियां हमें मीडिया में परोसी जाती है ना,
उन पर सवाल उठाना चाहिए।
बिल्कुल। हकीकत अक्सर ज्यादा जटिल होती है, ज्यादा परतदार होती है। हमें गहरी समझ की तलाश करनी चाहिए।
और आखिर में, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो नीतियां बनाते हैं, सरकारें, विश्लेषक।
हाँ, इतिहास को समझे बिना बनाई गई विदेश नीति अक्सर उल्टी पड़ जाती है। जैसे ईरान के संदर्भ में प्रतिरोध यानी मुकावमत या शहादत जैसे शब्दों के पीछे जो गहरा ऐतिहासिक और जज्बाती वजन है, उसे समझे बिना आप ईरान के फैसलों का सही अंदाजा नहीं लगा सकते।
तो इस सारी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो ये है कि ईरान में न अतीत कभी मरता नहीं है, वो हमेशा वर्तमान का हिस्सा बना रहता है।
सही कहा।
आज के ईरान को उसकी उम्मीदों को, उसके डरों को, उसकी पहेलियों को समझने के लिए उसके उस 3000 साल के सफर को जानना ही होगा, उसके मन के साम्राज्य की ताकत को, उसके संघर्षों को, उसकी पहचान की कहानी को।
इतिहास वहाँ सिर्फ म्यूजियम में नहीं है, लोगों की सोच में जिंदा है।
और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हम कितनी आसानी से किसी देश या संस्कृति के बारे में बनी बनाई राय कायम कर लेते हैं।
हाँ, खासकर जो वो खबरों में हो।
बिल्कुल।
एक्स वर्दी की किताब ये दिखाती है कि ईरान कितना ज्यादा जटिल, कितना परिष्कृत और कितनी गहरी परतों वाला देश है, जिसे अक्सर गलत समझा गया है। उसकी कहानी मुश्किल हालात में भी अपनी पहचान बचाए रखने की एक अद्भुत मिसाल है। ये वाकई मन के साम्राज्य की कहानी है, जो तलवारों से ज्यादा मजबूत साबित हुआ।
एक्सवर्दी हमें दिखाते हैं कि ईरान का ये मन का साम्राज्य सदियों के तूफानों को झेल गया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी उठता है।
क्या?
कि आज की ये जो तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया है, ये ग्लोबल कल्चर का जो दबाव है, क्या इनके सामने भी ये सांस्कृतिक लचीलापन वैसे ही काम करेगा जैसे इसने अतीत में हमलावरों को अपने अंदर समा लिया था?
ये सोचने वाली बात है।
हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो एक्सवर्दी का इतिहास हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।